नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और चार नई अमृत भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा, घुसपैठ राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती। श्री मोदी ने कहा, बोडो शांति समझौते के बाद हजारों बोडो युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। उन्होंने असम के गुवाहाटी में रोड शो किया और बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत रोजगार पर लगे प्रतिबंधों को कम करके सुधारों के पथ पर अग्रसर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत घने कोहरे और दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा बिहार में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। और WPL क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से राज्य में रेल संपर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन उत्तरी बंगाल को दक्षिण और पश्चिमी भारत से जोड़ेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रगति को मालदा से नई गति मिली है।
वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को चार और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहाँ के किसानों, यहाँ के नौजवानों को लाभ होगा, यहाँ टूरिज्म को बल मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि ये ट्रेन विकसित भारत की परिकल्पना को दर्शाती है और मेड इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ रहा। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी को जोड़ेगी। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और अधिक आराम के साथ लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्निर्माण और देश भर में चल रही 150 से अधिक वंदे भारत रेलगाड़ियों से गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्दयी बताया है। प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को राज्य की सबसे गंभीर चुनौती बताया।
बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहाँ घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि जहां कई समृद्ध देश अवैध प्रवासियों को निर्वासित कर रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं में बाधा डालने का भी आरोप लगाया।
आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बोडो शांति समझौते से बोडो समुदाय को अत्यधिक लाभ हुआ है और हजारों युवा हथियार तथा हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर में आयोजित पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दोहो 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के 1,500 करोड़ रुपए के पैकेज की सहायता से संपन्न शांति समझौते के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की सभी संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करती है और राज्य के लिए किए गए सभी वायदों को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल वे एक विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और 2 रेलगाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज शाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुति में शामिल हुए, जहां बोरो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया। कल प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे नगांव जिले के कलियाबर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा और बढ़ते यात्री एवं माल परिवहन को सुगम बनाया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री असम यात्रा के समापन से पहले कलियाबर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण एशिया उभरते क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ विकास स्थल बना हुआ है। व्यापारिक चुनौतियों में वृद्धि के बावजूद भारत बाजार के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान कर रहा है। ये विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम सर्वेक्षण का एक मुख्य निष्कर्ष है। अगले सप्ताह होने वाली दाओस वार्षिक बैठक के पहले इस निष्कर्ष को जारी किया गया है। मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट का मानना है कि रोजगार पर गतिरोध को कम करके भारत सुधार के मार्ग पर अग्रसर है। इसका कहना है कि अमरीकी प्रौद्योगिकी कंपनियों से निवेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्वीकृति बढ़ रही है।
रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक आउटलुक में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन परिसंपत्ति मूल्यांकन, बढ़ते ऋण, भू आर्थिक समायोजन और तीव्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती से अवसर और जोखिम दोनों के बढ़ने से अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 53% प्रमुख अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होंगी। वहीं पिछले साल सितंबर महीने में ये राय देखने वाले 72% लोग इस श्रेणी में थे। 52% लोग अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शेयरों में गिरावट आने और 40% लोग इसमें वृद्धि होने की आशा कर रहे हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने यवतमाल जिले में 4,775 करोड़ रुपए की बेंबला नदी परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से 5 तालुकों में 52,423 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र समग्र अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और विकास एजेंसी महिमा की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये एजेंसी प्रशिक्षित और कुशल युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन की दिशा में काम करेगी। 40 राष्ट्रमंडल देशों का 120 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया। वहां उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल, शीश महल और मानसिंह महल सहित प्रमुख संरचनाओं का भ्रमण किया। उन्होंने आमेर को भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य पर आज काशी में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी के प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए इसे देश और विश्व के समक्ष एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी है और शेष परियोजनाएं प्रगतिशील प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से देश में नदी और मुहाना डॉल्फिन की दूसरी व्यापक गणना की शुरुआत की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये सर्वेक्षण परियोजना डॉल्फिन के अंतर्गत 2 चरणों में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य ने अपने हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप तय किया है। श्री नायडू ने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ आज काकीनाडा में एएम हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के पहले बड़े उपकरण स्थापना समारोह में भाग लिया। श्री नायडू ने कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना है। सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 आयोजित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कल से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये प्रदर्शनी कारीगरों और शिल्पकारों को विशेष रूप से समर्पित है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्देश्य परम्परागत शिल्प में देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और उसका उत्सव मनाना है। एक रिपोर्ट।
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों को देश विदेश के खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित और बेचने का मंच उपलब्ध कराना है। इस आयोजन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से अधिक कारीगर भाग लेंगे, जिससे यह विविध पारंपरिक कौशल और शिल्पों का अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व करेगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना, उनकी पहचान मजबूत करना और टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना भी है। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन इस महीने की 31 तारीख को संपन्न होगा और आम जनता के लिए प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 17 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। आज ही खेले गए WPL के अन्य मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। और जिम्बाब्वे के बुलावायो में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे ग्रुप ए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 239 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण मैच को एक बार फिर रोकना पड़ा। अंतिम समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और बिहार के कुछ स्थानों पर भी घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीतलहर चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा, बोडो शांति समझौते के बाद हजारों बोडो युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। उन्होंने असम के गुवाहाटी में रोड शो किया और बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और WPL क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।